ओम शांति, ओम शांति। बाबा क्यों आए हैं, ये प्रश्न हर मुरली के लिए एक ही है, लेकिन उत्तर अलग अलग है। तो आज बाबा ने कहा है, मैं क्यों आया हूं, मैं आया हूं तुम बच्चों को स्वर्ग का पासपोर्ट देने। तो हम बाबा के पास आए हैं स्वर्ग का पासपोर्ट लेने, है ना। बिना पासपोर्ट के परदेश जाना हो तो पासपोर्ट तो चाहिए ना, वीजा भी चाहिए। तो बाबा के पास हम क्यों आए हैं, स्वर्ग का पासपोर्ट लेने हैं। इसके बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। तो पासपोर्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपना नाम रजिस्टर कराते हैं, फिर कुछ देना भी पड़ता है, और फिर वीजा भी लेनी होती है, किसी भी देश में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए ये पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस है, बाबा के पास आते हो। लेकिन स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु बाबा कहते हैं ऊंच पद पाना है, तो उसके लिए तो पुरुषार्थ करना होगा। और पुरुषार्थ का भी आधार क्या है, निश्चय। निश्चय बहुत जरूरी है कि भगवान हमें स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, विश्व महाराजन विश्व महारानी बनाने आए हैं। तो आज बाबा ने निश्चय पर भी बहुत कुछ कहा है, और साथ साथ सेवा की भी कई युक्तियां बाबा ने बताई है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 8/10/2025 है। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। तो उसके लिए क्या करना होगा, आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो, तो स्वर्ग में आ जाएंगे, मिल जाएगा पासपोर्ट। आत्माभिमानी बनो, शिव बाबा को याद करो, तो पासपोर्ट मिल जाएगा सत्युगी दुनिया में आने के लिए, स्वर्ग में आने के लिए। प्रश्न है, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं। ये तो है पता कि हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन कौन दे रहा है ये पासपोर्ट, भगवान दे रहा है, भगवान से हम ले रहे हैं, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए बाबा के लिए। परंतु रिगार्ड कई बार नहीं रहता बाबा के लिए, तो कौन सी स्मृति नहीं है जो रिगार्ड नहीं रहता। उत्तर है, कई बच्चों को ये स्मृति ही नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंच से ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है, हमारे लिए ही वो आया है। परंतु बाबा कहते हैं बच्चों को इतना रिगार्ड नहीं रहता है। ये निश्चय नंबर वार है, जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं, उतना बाबा को सम्मान देंगे जितना निश्चय है कि हमें कौन पढ़ा रहा है, कौन नई दुनिया में ले जा रहा है, कौन लायक बना रहा है। ये अगर बाबा कहते निश्चय होगा तब रिगार्ड रख सकते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो है ही, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, तो ज्ञान सागर से ये ज्ञान की बरसात हमें मिलती है। तो बाबा कहते हैं सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो है ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते, मधुबन में सब तो रह नहीं सकते जो डायरेक्ट ज्ञान सागर की वर्षा हम सुन सकें। इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते, भल जो साथ है वो नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर है उन्हों को देरी से मिलता है। अब पहले तो ऐसे ही था ना, यहाँ बाबा की मुरली चलती थी वो उस समय लिखते थे, फिर लिथो होती थी उसकी कॉपीज बनती थी, फिर पोस्ट करते थे और वो पोस्ट कब जाके पहुंचे, 8 दिन ले 10 दिन ले 15 दिन ले, तो इस तो कितना लेट पहुंचता था बाबा का, वो बाबा की बुलिया लेट पहुंचती थी। तो बाबा कहते हैं जो साथ है वो तो नजदीक में ज्ञान डायरेक्ट सुनते हैं और जो दूर है उन्हों को देरी से मिलता है। अभी ये बात नहीं है ना, अभी तो तुरंत यूट्यूब खोलो और मिल जाती है मुरली, परंतु ऐसे नहीं। फिर बाबा उसमें भी कहते हैं ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं, भले डायरेक्ट सुनते हैं बाबा से, लेकिन ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। जिनको लेट मिलती है मुरली वो कोई कम उन्नति को पाते और जो सामने होते हैं वो जास्ती उन्नति को पाते, ऐसी बात नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है जो दूर है वो भी नंबर वार है। बच्चों को दैवी गुण भी जो बाबा कहते हैं नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है जो दूर है वो जास्ती पढ़ते हैं। उनके अंदर उमंग आता है बाबा ने आज क्या कहा होगा, बाबा ने क्या कहा होगा, कब आएगी मुरली मेरे पास, तो वो जास्ती पढ़ते हैं जो दूर है और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है कि बेहद का बाप यहाँ है मधुबन में है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबर वार है, बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, केयरलेस अलबेले हो जाते हैं, तो क्या गफलत करते हैं, क्या भूले करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गफलत करते होती है। समझते भी हैं कि बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है वो हमारी सेवा में उपस्थित है, ये समझते भी हैं और हमको ऊंचते ऊंच बनाने का मार्ग भी बता रहे हैं, हाँ ये भी समझते हैं, बहुत प्यार से समझाते भी हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। इतना बाबा हमारे लिए करते हैं पर बाबा को हम इतना रिगार्ड नहीं देते। कैसे रिगार्ड दे सकते हैं, जब बाबा की श्रीमत पर चलते हैं ना, यही तरीका है रिगार्ड देने का। बाबा जो शिक्षा देते हैं उसको धारण करना, यही रिगार्ड देना है। तो बहुत प्यार से समझाते हैं फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। बांधेलिया कितना मार खाती है, तड़पती है, फिर भी याद में रहे अच्छा उठा लेती है और ज्ञान को और अच्छा उठा लेती है, क्योंकि तड़पती है ना बाबा के लिए। पद भी ऊंच बन जाता है उनका। बाबा सब के लिए नहीं कहते हैं, हाँ सब ऐसे नहीं है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। तो बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो न सके, कोई तो एकदम हाँ पक्के होते हैं, बाबा ने जो कहा उसको पूरा फॉलो करते हैं, और कोई बच्चे नहीं करते, तो बाबा कहते सब तो एक जैसे नहीं है। बांधेलिया आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती है, ये गीत तो भक्ति मार्ग वालों ने बनाया है ना, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, तो इसलिए। परंतु बाबा कहते जरूरी नहीं कि यहाँ मधुबन में है तो बाबा साथ अनुभव होता, वो कहाँ भी रहे बाबा का साथ अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करना, अर्थ करने जैसा भी है, वो क्या जाने पिया कौन और किसका पिया। गीत तो बनाया लेकिन पिया कौन पता ही नहीं। आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने। है तो आत्मा ना, मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये भी पता नहीं है। सब है दुनिया में इस समय, सब है देह अभिमानी, आत्म अभिमानी कोई भी नहीं है। अगर आत्म अभिमानी बने तो क्या पता हो, अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। आत्माभिमानी नहीं है तो परमात्म अभिमानी कैसे होंगे। तो बाप का भी पता हो, दे अभिमान होने के कारण न आत्मा को न परम पिता परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। ये है कहाँ बैठे हम सब, ये है बेहद का स्कूल, बाबा ने कहा पाठशाला, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो ये बेहद का स्कूल है। एम ही अब एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना, यही हमारा एम ऑब्जेक्ट है। स्वर्ग में भी बहुत पद हैं, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन न सके, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपने अंदर में समझते हैं। अच्छी रीति पढ़ते हैं तो क्या समझते हैं अपने अंदर, कि हम ये बन सकते हैं। अब जो पढ़ते ही नहीं है उनको अंदर में आएगा ना, मैं तो पुरुषार्थ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं कैसे बनूंगा। लेकिन जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते उनको निश्चय है हम ये बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है, सब समझते हैं। इनसे कोई ऐसा छीछी काम नहीं होता है, पूरा समझते हैं, पुरुषार्थ करते हैं तो फिर सब समझेंगे ना, कि इनसे कोई ऐसा छीछी काम नहीं होता है। कोई कोई भी तो बहुत अवगुण होते हैं, वो थोड़ी समझेंगे कि हम कोई इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। उनको पता हम तो पा ही नहीं सकते हैं ऊंच पद, इसलिए पुरुषार्थ भी नहीं करते। बाप से पूछे कि मैं ये बन सकता हूँ तो बाबा झट बताएंगे, अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे। बाबा भी बताएंगे, आप खुद को भी देखेंगे तो झट समझेंगे, बरोबर मैं ऊंच पद नहीं पा सकता हूँ। लक्षण भी तो चाहिए ना, ऊंच पद पाने के लिए लक्षण भी तो चाहिए ना। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं, वहां पर पुरुषार्थ करने की तो बात ही नहीं है, पर यहाँ तो करनी है ना, करना है पुरुषार्थ। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, वहां है प्रालब्ध। बाद में जो राजाएं होते हैं वो भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। बाद में द्वापर कलयुग में भी राजाएं तो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं, सतयुग त्रेता में कितना प्यार करते होंगे। तो सब राजाओं को तो मात पिता कहते हैं, मात पिता। तो जैसे माँ बाप बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे राजा प्रजा को प्यार करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं, बाद में जो राजाएं आते हैं। अब ये तो मात पिता है, ये भी तुम बच्चों को जानते हैं, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। ये तो बेहद का बाप है, ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं, रजिस्टर करने वाले हैं सारी दुनिया को। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, रजिस्टर करते ना पासपोर्ट लेना है तो। बाबा कहते तुम भी रजिस्टर करते हो, तुम भी पासपोर्ट दे रहे हो, तुम भी दूसरों को देते हो पासपोर्ट। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहां से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट में तो फोटो जरूर चाहिए, बिना फोटो के तो पासपोर्ट वैलिड ही नहीं है ना। तो बाबा ने कहा सब तुमको पासपोर्ट मिलता है, तो सबको बाबा ने कहा था कि सबका फोटो होना चाहिए है, दोनों फोटो हो, एक वर्तमान का फोटो और दूसरा सजा सजाया फोटो, हम ये बन रहे हैं। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो, हम ये बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी ये सैंपल रखना चाहिए, ये है राजयोग। हाँ, इस राजयोग से हम ऐसे बनते हैं। हाँ, तो बाबा मिसाल देते हैं, समझो कोई बैरिस्टरी पढ़ते हैं और बैरिस्टर बनते हैं, तो वो एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो और एक तरफ बैरिस्टरी ड्रेस पहनेगा ना। हाँ, किसको कोई मिला है, अब वो डिग्री प्राप्त की तो ऑर्डिनरी ड्रेस में होगा और फिर वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है उसमें वो डिग्री लेते हैं, तो फिर वो ड्रेस भी होती है, तो यहाँ ये पढ़ाई करके ये बने। तो बाबा कहते हैं समझो बैरिस्टर बनते हैं, तो एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो और एक तरफ बैरिस्ट्री ड्रेस, वैसे एक तरफ तुम साधारण और एक तरफ डबल सिरताज, तुम्हारा ऐसा फोटो हो। तुम्हारा एक चित्र है ना, जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो। पहले रखते थे एग्जीबिशंस में, एक ऐसे बनाते थे जैसे कबर्ड जैसा, और उसमें लिखा रहता था तुम क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, ये तो उसमें सब पद होते थे। फिर लास्ट में होता था लक्ष्मी नारायण, तो फिर लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो उसके लिए फिर क्या बनना है, डॉक्टर बनना है तो क्या चाहिए, बैरिस्टर बनना है तो क्या चाहिए, तो किस पर बटन दबाते उस अनुसार वो लिखत आती थी। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी आदि में भी ये सैंपल रखना चाहिए, हम ये बन रहे हैं, ये है राजयोग। समझो, हाँ, तुम्हारा एक चित्र है ना, जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो, ये बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है, क्या बनना चाहते हो, ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं, सत्युग में तो बैरिस्टर जज आदि होंगे नहीं, वो तो यहाँ के हैं। तुमको तो राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है, एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम ये बन रहे हैं। तो समझाने कितनी अच्छी है, चित्र भी बड़े अच्छे हो, फुल साइज के, बाबा को छोटे छोटे चित्र पसंद नहीं थे, फुल साइज के चित्र हो। वो बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परम पिता परमात्मा से है तो डबल सिरताज बनते हैं, ऐसा फोटो हो। अब बाप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा, हम ये बन रहे हैं। तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, अब लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं, तो बाबा कहते हैं जरूर फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। तो नरक के बाद है स्वर्ग, अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, ये पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है, इसमें पैसे आदि की तो दरकार ही नहीं है। हाँ, तो कितना खर्चा होता है कोई भी पढ़ाई करते हैं, तो अब इसमें पैसे आदि की तो दरकार ही नहीं है, बस पढ़ाई का शौक होना चाहिए, बस ये जरूरी है, पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया, है ना। पढ़ाई से क्या नहीं पद पा सकते हैं, फिर कितना धन भी मिलता है पढ़ाई से मिलता है। तो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया पढ़ते पढ़ते मेहनत करते करते। तुम भी अभी कितने गरीब हो, बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है, इसमें पैसे खर्च करने की बात नहीं है, बस बुद्धि से बाबा को याद करना है, पढ़ाई पढ़नी है, धारणा करनी है तो ऊंच पद पा लेंगे। बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं। वो तो दिखाते ना कि कैसे वो घर में लाइट नहीं थी तो जो रास्ते की जो लाइट होती थी उसके नीचे बैठ के पढ़ता था, लाइट में पढ़ता था, तो और वो उसमें पढ़ाई की और कितना ऊंच बन गया। तो यहाँ तो बत्ती आदि की भी दरकार नहीं है, जरूरी नहीं कि लाल लाइट हो तभी योग में बैठ सकते हैं, योग कर सकते हैं, कभी भी कहाँ भी कर सकते हैं। बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं, कहाँ भी बैठकर याद करो, परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। यही तो युद्ध है ना, माया के विघ्न पड़ते हैं तो याद में, तो यही युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप की याद से। पढ़ाई में माया कुछ भी नहीं करती है, पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है। इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है, योग और ज्ञान कहा जाता है ना, योग के लिए ज्ञान मिलता है। ऐसे ऐसे याद करो, और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। एक तो याद के लिए ज्ञान है, फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। अब प्राचीन तो कहा जाता नई दुनिया को, तो भारत का प्राचीन योग माना वो नई प्राचीन दुनिया के लिए योग है ये। तो प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को, उनको फिर लाखों वर्ष दे देती है। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं, कोई क्या कहते कोई क्या कहते। यहाँ तुमको एक ही बाप पढ़ाते हैं, एक अनेक मते नहीं है, यहाँ एक ही मत शिव बाबा की है, वो ही पढ़ाते हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे तुमको चित्र मिलेंगे, ये तो व्यापारी है ना, हाँ कहाँ भी जाओ चित्र साथ में हो, ये तो व्यापारी है ना। अब बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं चित्र, उस समय तो आजकल का तो बहुत सहज है सब कुछ करना, उस समय तो इतना सहज नहीं था ना, तो बाबा फिर कई युक्तियां बताते कैसे चित्र छपाओ। बाबा कहते कपड़े पर भी छप सकते हैं, अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस न हो, जो बहुत बड़ा चित्र एक ही प्रेस में डाल सके वो न हो, तो आधा आधा कर दो, बड़ी प्रेस न हो प्रिंटिंग प्रेस, फिर जॉइंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता, सब बाबा को पता है, ब्रह्मा बाबा को, तो फिर आधा आधा छपाओ और फिर जोड़ दो तो पता भी नहीं पड़ेगा कि ये एक ही है या अलग दो है। फिर जॉइंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं, कोई छपाकर दिखाए ऐसे चित्र तो मैं उनका नाम बाला करूंगा। अभी तो क्या चित्र, तो क्या ट्रांसलाइट्स, सब कितने सेंटरों पर देखे एक एक बाबा का चित्र ट्रांसलाइट में, तो कितने सुंदर लगते हैं। तो बाबा कहते कोई छपाकर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला करूंगा। ये चित्र कपड़े पर छपाए, कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक ही चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देवे। क्या था ना, दादी प्रकाशमणि और रतन मोहिनी दादी जी को बाबा ने कहा था चित्र ले जाओ, तो वो कास्केट में होते थे, एक त्रिमूर्ति गोला और साथ में झाड़, तो ये दो चित्र वो तो यज्ञ में ही बने थे, तो ये दो चित्र बनाए थे और वो लेकर गए। तो जापान में निमंत्रण मिला था वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, तो उनको ये झाड़ का चित्र इतना अच्छा लगा जो वहां उन्होंने प्रिंट कराया और प्रिंट करा करके सबको दिया था। तो देखो बाबा कहते हैं ये चित्र, एक एक चित्र का कोई दस, ये चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देवे। पैसे तो वहां ढेर है ना विदेश में, भल बन सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है, शहरों की सीन सीनरी ऐसी ऐसी छपती है, बात मत पूछो। इतनी बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, कितने बड़े बड़े चित्र छपते हैं, बात मत पूछो। अब ये भी छप सकता है त्रिमूर्ति झाड़ गोला, ये तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है, कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इसमें ही है और कोई के पास तो है ही नहीं, ये है ही नहीं, किसको पता ही नहीं है। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए, क्योंकि विदेश में चित्र ले जाना है तो समझाने के लिए फिर इंग्लिश में उसको इंग्लिश का ज्ञान हो तो वो इंग्लिश में समझा सके। तो फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए, इंग्लिश तो सब जानते हैं, उनको भी संदेश तो देना है ना, विदेश वालों को भी संदेश देना है। बाबा देखो विदेशियों को कितना याद करते थे, उनको भी तो संदेश देना है ना, वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार, विदेश वाले ही ड्रामा अनुसार विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं। तो बाबा ने बताया है उनके पास बॉम्ब्स आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाए, अमेरिका और रशिया दोनों आपस में मिल जाए तो सारे विश्व का मालिक बन सकते हैं। परंतु बाबा को परंतु कहना पड़ता है, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो वो विश्व पर राज्य नहीं कर सकेंगे, मिलकर कर अकेला नहीं होगा, दोनों मिले तब हो, लेकिन वो होंगे ही नहीं दोनों, आपस में लड़ते ही रहते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं परंतु ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, वो बाहुबल से विश्व की बादशाही कोई ले नहीं सकता, तुम योग बल से ही विश्व की बादशाही लेते हो, हथियार आदि से विश्व के मालिक बन न सके। वो है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस, सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो और आप समान बनाओ। बस तीन काम बाबा ने दिया, बाप को याद करो, चक्र को याद करो और दूसरों को आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो, वो आपस में लड़ेंगे भी जरूर, आपस में भी लड़ेंगे जरूर, माखन बीच में तुमको मिलना है। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं, कहावत भी है ना, दो आपस में लड़े बीच में माखन तीसरा खा गया, दो बिल्ले लड़े और माखन बीच में बंदर खा गया, तो बीच में माखन तीसरा खा गया है भी ऐसे, सारे विश्व की राजाई का माखन तुमको मिलता है, चढ़ता है नशा, सारे विश्व की बादशाही का माखन हमें मिलता है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वो वाह बाबा वाह, आपकी तो कमाल है, ऐसे बाबा को याद करो, वाह बाबा वाह, आपकी तो कमाल है, नॉलेज तो आपकी ही है, आपने दी है ये नॉलेज, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, ये किसको भी ख्याल में होगा ही नहीं, उस समय और कोई खंड वो था नहीं, सिर्फ एक भारत ही था, उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ, तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो, मैं परमात्मा तो हूं ही अशरीरी, तुम सबको शरीर है। अशरीरी जो है केवल जिसको अपना शरीर नहीं, वो कभी विश्व का मालिक बनेगा। शरीर चाहिए ना विश्व का मालिक भी बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हो, मैं परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी। तुम सबको शरीर है, तुम देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन परम आत्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते। बाबा जैसे जन्म लेते हैं और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते, पर काया प्रवेश करते हैं, तो ये उनका अलौकिक जन्म है। तो और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते हैं, ये मुकरर है, इनमें ही प्रवेश करते हैं, ये मुकरर तन है। ये सब ड्रामा में नूंद है। हाँ, कई क्या क्या प्रश्न करें, इनके ही तन में क्यों? बाबा कहते ये तन ही मुकरर है, ये भी ड्रामा में नूंद है। कोई अभी मर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सबको ड्रामा में नूंद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, पर समझेंगे सब नंबरवार। ड्रामा की समझानी बाबा कितनी देते हैं, लेकिन सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो डल बुद्धि होते हैं, तो तीन ग्रेड्स होती है ना। पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते हैं ये फर्स्ट ग्रेड में है, ये सेकंड ग्रेड में है। प्रजा में भी ऐसे ही है, डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर नो ताज। पहले डबल ताज, फिर सिंगल ताज, फिर नो ताज। जैसे जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे जैसा जैसा कर्म वैसा फल। क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, क्योंकि वहां तो कोई किसी को भी कोई शारीरिक व्याधि नहीं, कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं। यहाँ कहना पड़ता है क्योंकि सबकी अलग अलग स्थिति है। तो किसी को बहुत कष्ट है तो क्या कहेंगे, है अपने कर्मों का फल है ना, और किसी का तो नहीं है। और किसी कोई कोई बहुत स्वस्थ है तो कहेंगे अच्छे कर्म किए हैं, पर वहां तो सब स्वस्थ है, किसी को कोई शारीरिक व्याधि नहीं, कोई और प्रॉब्लम नहीं। तो वहां कहने में भी नहीं आएगा कि जैसा कर्म वैसा फल। तो बाबा कहते हैं हाँ, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे जैसा कर्म वैसा फल। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं, ये भी कर्म भोग है ना। अब जन्म से ही रोग तो कर्म भोग है ना। ये बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना, पद में फर्क है तो गरीब साहूकार का भी तो अंतर होगा ना वहां। अभी के पुरुषार्थ अनुसार ही है सब कुछ। वो प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए, यहाँ मिलता है अल्पकाल का। कर्म तो चलता है ना, सतयुग में भी कर्म होंगे, यहाँ भी कर्म होते हैं, कर्म तो चलता है ना। ये कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र पर आना माना कर्म करना, ये कर्म क्षेत्र है। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहाँ भी कर्म होता ही नहीं। ये सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं, कई है लिखते ही रहते हैं, बाबा की सारी मुरली जैसे नोट भी कर लेते हैं। तो कई कोई बिरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं, चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तो तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए, बहुत महीन महीन पॉइंट्स है, कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बाबा मुरली में सुनाते हैं, बहुत महीन महीन पॉइंट्स है जो सब तुम कभी याद भी नहीं कर सकेंगे, इतनी बाबा पॉइंट्स देते हैं, जो तुम सब कभी याद भी नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएगी पॉइंट्स, फिर पछताएंगे कि ये पॉइंट तो हम भूल गए, भाषण में ये पॉइंट सुनानी थी पर मैं भूल गया, हाँ क्यों खिसक गई वो पॉइंट। सबका ये हाल होता है, ऐसे नहीं जो बहुत होशियार है वो उसको सब याद रहता है, ऐसी बात नहीं है, सबकी बुद्धि से बात कुछ न कुछ खिसक जाती है, सबका ये हाल होता है, भूलते बहुत है, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा, अरे कल मुझे ये भाषण में सुनाना था मैं तो भूल ही गया। और आजकल तो भूलना तो इतना सहज हो गया है, कुछ भी बात कहो ना भाई ये करना, कल पूछो किया भूल गया, हाँ भूलना कितना सहज हो गया। सबका ये हाल है, भूलते बहुत है, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है, बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे, लिखने से फिर भी याद थोड़ी ठहर जाती है, इसलिए कई तो अपने साथ सदा डायरी रखते हैं, कुछ भी बात आई तुरंत लिख देंगे, नहीं तो कल भूल जाएगी ना, इसीलिए लिख लेंगे। बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे, बाबा व्यापारी भी है, वो है विनाशी रत्नों के व्यापारी और ये है ज्ञान रत्नों के व्यापारी। योग में ही बहुत बच्चे फेल होते हैं, एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं, 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है, 8 घंटा याद रहे बाबा कहते ये पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है, बाबा ने आशिक माशुक का भी मिसाल दिया है, सब जगह जैसे वो माशुक उनके सामने आ जाता था, तो आशिक माशुक का भी मिसाल दिया है, हर कर्म करते वो आशिक अपने माशुक को याद करते हैं, वहाँ तो दोनों ही आशिक है, ऐसे नहीं एक माशुक है दोनों एक दो के आशिक है, यहाँ माशुक एक है आशिक अनेक है, तो दोनों। तो बाबा कहते हैं आशिक माशुक का भी मिसाल दिया है, बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते हैं, ये भी एक साक्षात्कार है। हीर रांझा सोइनी महिवा लैला मजनू ये बहुत कहानियां आई है और ऐसे होके गए हैं, तो बाबा कहते हैं ये भी एक साक्षात्कार है, वो उनको याद करते वो उनको याद करते, और जैसे याद करते उनका चेहरा सामने आ जाता है जैसे उसके सामने उपस्थित हो गया हो, वो उनको याद करते उनको याद करते। यहाँ तो फिर एक है माशूक और तुम सब हो आशिक, वो सलोना माशूक तो सदैव गोरा है, सदैव सुंदर है, एवर प्योर है, तो बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ। एक फिल्म आई थी उसी समय बाबा के दिनों में, एक मुसाफिर एक हसीना, तो इसमें तो बाबा के तब बाबा उस पर बहुत सुनाते थे कि वो मुसाफिर कितना हसीन है कितना खूबसूरत है, तो बाबा कहते हैं एक मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ, इन देवताओं की है नेचुरल ब्यूटी, यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, वहाँ पर मेकअप और पाउडर आदि बाबा कहते कुछ भी नहीं होगा, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं, वहाँ तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है, ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो, अब से तुम जाते हो ऐसी दुनिया में। तो बाप कहते हैं मैं पुरानी पतित देश पतित शरीर में आता हूँ, यहाँ पवित्र शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। प्रवृत्ति पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ इनमें प्रवेश कर। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे। अभी तो बहुत सर्विसेबल है, कितनी सेवा, चारों ओर सेवा ही सेवा है बाबा की। पुरुषार्थ करेंगे फिर समझेंगे, आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिल न सके, पानी भी मिल न सके बिना पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिल न सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी ही है, कोई उसको रोक नहीं सकता। सत्युगी राजधानी स्थापन होनी ही है, कल्प पहले माफिक। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनाए। सरेंडर तो हो गए लेकिन कभी कभी फिर निश्चय डामाडोल भी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छीछी काम न हो, अंदर कोई भी अवगुण न रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। दूसरा, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए क्या करना होगा? ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं उन्हें नोट करनी है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। वरदान, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, बाबा के बच्चे कितना नशा रहता है, तो सब जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है, मालिकपन की विशेषता क्या है? जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी। मालिक का मतलब ये नहीं मैं तो बॉस हूँ, हाँ, पर जितना ही बाबा कहते हैं मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो, तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्मों में आ जाए, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। अव्यक्तिशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो के अंतर्गत जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाचा सेवा तो नेचुरल हो गई है, तो मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। मनसा सेवा द्वारा सेवा होगी तो बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल से आप सभी ने सुना होगा, सुनते रहे सारा दिन हमारे बहुत पुरानी यज्ञ की मीरा बहन ने कल शरीर छोड़ा, तो उसके लिए आया है बाप दादा के अति स्नेही अति आदि रतन और भोली दादी की बेटी मीरा बहन जी ने कल सुबह 9:30 बजे अपना पुराना शरीर छोड़ बाबा की गोद ली। ऐसी महान आत्मा के लिए हम सब योग में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आज 9:30 बजे मीरा बहन जी के पार्थिव शरीर को पांडव भवन चार धाम यात्रा कराएंगे और फिर यहाँ माउंट आबू के मुक्ति धाम में संस्कार के लिए ले जाएंगे और शाम को 7 बजे हिस्ट्री हॉल में भोग लगेगा। मीरा बहन के निमित्त हिस्ट्री हॉल में शाम को भोग लगेगा। अभी 9:30 बजे उनके पार्थिव देह को पांडव भवन में लाया जाएगा और चार धाम की यात्रा कराई जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम उस आत्मा को योगदान देंगे 3 मिनट।